अभिजीत जी, आलोक जी, रजनी जी, वृंदा जी और रश्मि सब परेशान से लिविंग रूम में बैठे थे। सभी समझ रहे थे कि किसी बात से वो परेशान और दुखी है, पर वो कुछ बता ही नहीं रही थी। आज उसकी हालत देखकर वृंदा जी का सब्र टूट गया और आंखें छलक आईं। इकलौती बेटी जिसे उन्होंने नाजों प्यार से पाला, उसकी ऐसी दशा देखकर उनका भावुक होना लाजमी ही था। रजनी जी और रश्मि ने किसी तरह उन्हें चुप करवाया। वृंदा जी ने उम्मीद भरी नम आंखों से रश्मि को देखा और बेबसी बोली, बेटा वो हमें तो पूछने पर भी कुछ नहीं बताती, पर आपसे तो कुछ नहीं छुपाती, आप ही बता दीजिए किस बात से वो इतना परेशान और दुखी है। रश्मि ने उनकी बात सुनकर मायूसी से कहा, मॉम इस बार वो मुझे भी कुछ नहीं बता रही, इतना पूछा मैंने पर हर बार बात टाल देती है, फिर भी मैं आज फिर पूछ कर देखती हूँ उससे, क्या पता आप कुछ बता दे। वृंदा जी को एक उम्मीद मिली, उन्होंने उसको जाकर बात करने को कहा तो रश्मि सीढ़ियों के तरफ बढ़ गई। सृष्टि के रूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर बेड पर लेटी सृष्टि सूनी निगाहों से सीलिंग को घूरे जा रही थी। आंखों के कोर में आंसू की एक बूंद फंसी हुई थी। रश्मि ने उसके रूम के गेट को नॉक किया तो सृष्टि ने अपने आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। रश्मि को वहां खड़े देख एक बार फिर छूटी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, भाभी आप वहां क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। रश्मि अंदर आकर उसके पास बैठ गई और गहरी निगाहों से उसको देखते हुए बोली, सृष्टि तुम्हें मेरे सामने ये झूठी मुस्कान लबों पर सजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द और नमी देख पा रही हूँ। रश्मि की बात सुनकर सृष्टि की वो झूठी मुस्कान भी उसका साथ छोड़कर चली गई और आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें देखकर रश्मि ने चिंता भरे स्वर में आगे कहा, सृष्टि क्या हुआ, किस बात से तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंच रही है, कौन सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है कि ना तुम्हें अपने खाने पीने का होश रहता है, ना पहले जैसे हंसती मुस्कुराती हो, ऐसी तो नहीं थी तुम, देखो चंद दिनों में क्या हाल बना लिया है तुमने अपना, तुम तो मुझे अपनी दोस्त समझकर हर बात मुझसे शेयर करती थी ना, क्या इस बार अपनी भाभी को अपने मन की बात नहीं बताओगी। सृष्टि की आंखें छलक आईं, उसने रूंधे गले से कहा, मैं क्या करूं भाभी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं पर नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं नहीं संभाल पा रही खुद को, मेरा कहीं मन नहीं लगता, कुछ करने का जी नहीं करता, बहुत कोशिश की मैं पर मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना, मैं मर जाऊंगी भाभी, आप बताएं मैं क्या करूं। सृष्टि फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी हालत देखकर रश्मि की आंखें भी नम हो गई। उसने सृष्टि को अपने सीने से लगा लिया और उसके पेट सहलाते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते सृष्टि, मरने की बात नहीं करते, दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल ना हो, तुम तो इतनी कमजोर नहीं हो, संभालो खुद को और बताओ मुझे हुआ क्या है, किसके बिना नहीं रह सकती तुम। सृष्टि उससे अलग हो गई और अपनी हथेलियों से अपने आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से बोली, भाभी अर्जुन ने मुझे उनके घर आने से मना कर दिया है, उन्हें लगता है कि मैं अंश का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि उन तक पहुँच सकूँ, उन्हें लगता है कि अंश के लिए मेरा प्यार ममता सब दिखावा है, मैं बस उनकी ज़िंदगी में घुसने के लिए अंश का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे उनके घर आने और अंश से मिलने के लिए मना कर दिया है, पर भाभी मेरा यकीन कीजिए मैंने कभी सपने में भी ये सब करने की नहीं सोची, मैं जानती हूँ कि मैं कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, मैं तो उनकी दोस्ती से ही बहुत खुश थी, अंश के लिए मेरा प्यार मेरा लगाव सच्चा था, जब से मैंने उसको पहली बार अपनी गोद में लिया था तभी से एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया था मेरा उसके साथ, जब तक उसका चेहरा नहीं देख लेती दिन जैसे शुरू ही नहीं होता था, ऑफिस के बाद जब उससे मिलने जाती तो उसके मासूम से चेहरे को देखकर ही सारी थकान उतर जाती थी, उसके साथ रहती तो अलग ही सुकून मिलना था, उसके लिए वो सब काम करना अच्छा लगता था मुझे, वो भी तो इतना प्यार करता था मुझसे, पता नहीं अर्जुन को क्यों मेरे प्यार में खोट नजर आ गई और उसने मुझे अंत से दूर कर दिया, मैं नहीं रह पा रही उससे दूर, मुझे हर पल उसकी याद आती है, हमेशा मन बेचैन रहता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे जीने की वजह को मुझसे छीन कर दूर ले गया है, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना भाभी, मैं तड़प रही हूँ उसको देखने के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए, मैं क्या करूँ भाभी, अगर मैं अंत से नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी भाभी, मर जाऊंगी मैं। रश्मि जो उसकी बात सुनकर शॉक्ड सी उसको देखने लगी थी, उसके मरने की बात सुनकर एकदम से होश में लौटी और उसको अपने गले से लगाते हुए बोली, कैसी बात करती हो सृष्टि, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई तुम्हें अंत से दूर नहीं करेगा, खुद को संभालो सब ठीक हो जाएगा, मैं अर्जुन भैया से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि तुम गलत नहीं हो, तुम सच में अंत से बहुत प्यार करती हो, देखना वो मेरी बात समझेंगी और तुम्हें फिर से अंत से मिलने की इजाज़त दे देंगी। सच भाभी, सृष्टि उम्मीद भरी नम आंखों से उसको देखने लगी तो रश्मि ने सर हिला दिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ पर उसके लिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और मेरी बात भी सुननी होगी, बोलो मानोगी ना मेरी बात। हाँ भाभी मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस मुझे अंश के पास ले चलिए, मुझे उसको देखना है, उसको अपनी गोद में लेकर बहुत सारा प्यार करना है। रश्मि अंश के लिए सृष्टि की तड़प देखकर सुन थी, पर इतना समझ गई थी कि अंश में जान बसती है सृष्टि की। अगर उसे सृष्टि से दूर किया गया तो शायद वो सृष्टि खो बैठे। रश्मि ने गहरी सांस छोड़ी और प्यार से इसके गाल को छूकर बोली, हाँ मैं ले चलूंगी तुम्हें अंश के पास। पहले तुम जाकर मुंह धो और अब बिल्कुल नहीं रोना है। मैं तुम्हारे लिए खाना और दवाई लेकर आती हूँ, उसे खाकर तुम थोड़े देर आराम करोगी। तब तक मैं भैया से बात कर लूंगी और शाम को तुम्हें लेकर चलूंगी अंश के पास, ठीक है? सृष्टि की टूटती सांसों को जैसे एक उम्मीद सी मिल गई, उसने तुरंत अपना सर हिला दिया। रश्मि ने उसको बाथरूम में भेज दिया और नीचे पहुंची तो सब परेशान से उसके पास चले आए। रश्मि ने सबको देखा, फिर वृंदा जी और अभिजीत जी को देखकर बोली, मॉम डैड चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने सृष्टि से बात की है और आपको भी सब बताऊंगी, पर पहले उसको खाना खिलाकर दवाई देकर सुला दूं, सोएगी तो शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलेगा। वृंदा जी ने बेबसी से सर हिला दिया। अभिजीत जी ने दवाइयां उसे दे दी। रश्मि ने खाना निकाला और वापस सृष्टि के कमरे में चली आई। सृष्टि मुंह धोकर बेड पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। रश्मि ने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और दवाई खिलाया, लेटने को कहा तो सृष्टि उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। रश्मि प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ घंटे भर बाद जाकर सृष्टि की आंख लगी। रश्मि ने उसका सर पिलो पर रख दिया और रूम का दरवाजा भिड़काकर नीचे चली आई। नीचे बैठे सब लोगों को उसी का इंतजार था। रश्मि आकर सबके बीच बैठ गई, पर उसने कहा कुछ नहीं, अपनी ही सोच में उलझी हुई। कुछ देर तक तो सब इंतजार करते रहे, पर रश्मि ने जब कुछ नहीं कहा तो वृंदा जी ने व्याकुलता से सवाल किया, रश्मि बेटा कुछ तो बताइए, क्या हुआ है सृष्टि को? उनकी आवाज सुनकर रश्मि अपने ख्यालों से बाहर आई और सबके परेशान चेहरों को देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर पीछे सीढ़ियों की तरफ चली गई, जहां से सृष्टि बदहवास से उतरकर गेट की तरफ भाग गई थी। रश्मि एकदम से उठकर खड़ी हो गई और घबराकर सृष्टि को आवाज लगाई, सृष्टि? सब उसके अचानक खड़े होने और चीखने से चौंक गए, और जब उन्होंने सृष्टि को यूं घर से बाहर जाते देखा तो सब परेशान से उसके तरफ दौड़े। कितनी बार उन्होंने उसको आवाज लगाई, पर सृष्टि को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बाहर आई और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गई। बाकी सब जब तक वहां पहुंची सृष्टि जा चुकी थी।
वृंदा जी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। वहीं अभिजीत जी परेशान से बोले, इनकी हालत ठीक नहीं और अब इतनी जल्दबाजी में जाने कहां चली गई है वो, हमें बहुत चिंता हो रही है। मैं जानती हूं कि वो कहां गई होगी, अचानक ही रश्मि ने स्वर वहां गूंजे तो सब उसको देखने लगे। रश्मि ने सबको देखा और गंभीरता से बोली, आप सबके सवालों के जवाब जल्दी ही आपको मिल जाएंगे, पहले हमें सृष्टि के पास पहुंचना चाहिए। अभिजीत जी ने गाड़ी निकाली और रश्मि उन्हें रास्ते बताने लगी। दूसरे तरफ ठाकुर निवास में अमरजीत जी बेचैन से ड्राइविंग रूम में टहल रहे थे। माला एक तरफ परेशान सी खड़ी थी, शायद दोनों को ही किसी का इंतजार था। कुछ देर बाद बाहर बाइक रुकी और अगले ही पल सृष्टि बदहवास सी दौड़ती हुई अंदर आई। अमरजीत जी और माला ने जब सृष्टि को देखा तो एक पल को उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही सृष्टि है जिसे वो जानते थे, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। घर के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे उसने, जिसमें उसका कमजोर शरीर साफ नजर आ रहा था। चेहरा सूख कर छोटा सा हो गया था, आंख अंदर धंस गई थी और गोरे चेहरे पर कालापन छाया हुआ था। आंखों के नीचे काले धब्बे बन चुके थे और आंखें एकदम लाल थीं, शायद रोई थी वो। बाल भी बिखरे हुए थे और पैरों में घर की स्लिपर्स डाली हुई थीं। अमरजीत जी स्तब्ध से उसको देखते ही रह गए। वहीं सृष्टि बदहवास से दौड़कर उनके पास आई और व्याकुलता से बोली, अंकल अंश कहाँ है? वो इतनी घबराई हुई थी कि उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर अमरजीत जी होश में लौटे और परेशान निगाहों से उसे देखते हुए बोले, बेटा ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपना? सृष्टि ने उसके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बेचैन व्याकुल निगाहों से उन्हें देखते हुए रुंधे गले से बोली, अंश कहाँ है अंकल? मुझे देखना है उसे। अमरजीत जी उसके बिना कुछ कहे सब समझ गए और अर्जुन के रूम की तरफ इशारा करते हुए बोले, अंदर रूम में है, दो दिन से बुखार था, कुछ देर पहले बेहोश हो गए, डॉक्टर आए हैं उन्हें देखने। अंश की ये हालत सृष्टि से दूर होने की वजह से ही हुई थी। बेचारा 6 महीने का बच्चा कलप रहा था उसके लिए, दो दिन से बुखार से तप रहा था और इंतजार था उसको सृष्टि का, पर वो नहीं आई। अमरजीत जी ने अर्जुन को बहुत बार कहा कि अंश का इलाज दवाई नहीं है बल्कि सृष्टि है, उसके ना आने की वजह से अंश की ये हालत है, तो उसे बुला लो, पर अर्जुन नहीं माना और आखिर में बच्चा अपनी हिम्मत हार गया। उसके बेहोश होने पर अमरजीत जी ने ही सृष्टि को फ़ोन किया था, तब सृष्टि सोई की ही और फ़ोन की आवाज़ से उठ गई। अमरजीत जी ने उसको बस इतना बताया कि अंश की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसको याद कर रहा है, और इससे ज़्यादा सृष्टि ने सुना ही नहीं। वो अर्जुन की बात भुलाकर बदहवास सी दौड़ती हुई घर से निकल गई। टू बी कंटिन्यूड।